पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए। शक्ति कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। शक्ति कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए। ये घड़ी लौट ना आए।
आज हमारे बीच में है आदरणीय राजयोगिनी गोपी दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आपका लौकिक जन्म विदेश की धरनी अफ्रीका में हुआ, उसके बाद आप लंदन भी गए। लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए। लगभग 40 वर्षों से आप राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 30 से भी अधिक वर्षों से बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 25 से भी अधिक वर्षों से IYF इंटरनेशनल यूथ फोरम को आप संभाल रहे हैं। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं, सरकारी प्लेटफॉर्मों, मंत्रालयों, सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों में सेमिनार्स में स्पीच भी देते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज भी करते हैं और विशेष करके हर क्षेत्र में आध्यात्मिक मूल्यों की कितनी आवश्यकता है। बिना आध्यात्मिक मूल्यों के टिकाऊ विकास संभव नहीं है, इस बात पर विशेष जोर डालते हैं और इस तरीके से इनडायरेक्टली सभी मंचों से बाबा का ज्ञान सब तक पहुंचाते हैं। आज हमारे बीच में है मुरली की मस्तानी गोपी दीदी। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है, तो दीदी के अनुभव से हम सुनेंगे और उसके बाद जैसे पहले ही बताया आपके लिए खुला ऑफर है क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो दीदी पहले इस विषय पर बोलेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। योग में बैठते ही मुझे इतनी अच्छी रूहानी खुशबू आ रही थी आप सभी से, पता नहीं आप में क्या खूबी है जो कितनी सुंदर एक शीतल तक की अनुभव हो रही थी मुझे। तो आज का जो विषय है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे अभी 15-20 मिनट मिला थोड़ा मंथन करने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली। तो हम 20 मिनट में जितना हमारा मंथन था वो तो शेयर करेंगे, आपके सामने रखेंगे, बाकी का फिर आप और निकलवाएंगे क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि अविनाशी कमाई हमारे ज्ञान रत्नों से होती है, वही अविनाशी कमाई है। सबसे ऊंच से ऊंच सेवा है ज्ञान रत्नों का लेन देन। ज्ञान जो अविनाशी बाप ज्ञान उचारते हैं तो एक एक सत्य वचन अविनाशी है और एक एक शब्द के गहराई में जाकर के हमारी आत्मा में जो पोटेंशियल है वो खुल जाती है। जो आत्मा बहुत समय से सप्रेस हुई थी वो खिलती है। जो अंदर में शक्तियां हैं, खूबियां हैं, गुण हैं, वो सब निकल आते हैं अविनाशी ज्ञान की चाबी से। और वंडर की ये बात है कि हम जितना उस डेप्थ के रियलाइजेशन में जाएंगे, एक एक ज्ञान के पॉइंट के रियलाइजेशन, केवल बुद्धि का समझ नहीं लेकिन उसकी अंदर की महसूसता, तब जाकर के हमारी स्पिरिचुअलिटी जागृत होती है। हम केवल ज्ञान में इंटेलेक्चुअल नहीं बनते हैं लेकिन स्पिरिचुअल बनते हैं। मुझे याद है जब दादी जी विदेश में आए थे तो बहुत कई सालों से, स्पेशली जब सेवाओं की वृद्धि हो रही थी तो दादी जी सभा में भी ये प्रश्न पूछते थे, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, क्या है स्पिरिचुअलिटी। चलो हम नियमों पे चलते हैं, मर्यादाओं पे चलते हैं, लेकिन जो रूहानियत है, जो रूह की खुशबू है वो हमारे सोच संकल्प, हमारे बोल, हमारे व्यवहार में कहां तक आई है वो खुशबू। हमारे कर्म द्वारा औरों को हमारी रूहानियत की शीतलता महसूस हो रही है। तो रूहानियत में साधारणता नहीं है, रूहानियत में स्पेशलनेस है, स्पेशलिटी है। तो ज्ञान रत्नों से खेलने से रूहानियत जागृत होती है। और आप देखो रूहानियत एक प्रकार की रोशनी है और सारा संसार रोशनी के आधार से चलता है। एवरीथिंग इज लाइट। आप अपने सेल के डेप्थ में भी जाएंगे ना, जो एटम है वहां पे भी फोटॉन्स है, बिल्कुल लाइट है, स्पेस एंड लाइट। तो अभी जो हम मंथन करके खुद का रियलाइज करते हैं, उसका जो प्रारब्ध हमको मिलता है, अब सोचो सत्युग के शुरू से त्रेता के अंत तक वो प्रारब्ध हम भोगते हैं। इतनी पावर है अविनाशी ज्ञान रत्नों में। फिर बाकी जो धन संपत्ति प्रॉपर्टी वो तो सब विनाशी कमाई, वो तो द्वापर से बात मिलता है, लेकिन उनसे केवल टेम्पररी खुशी मिलती है। अविनाशी कमाई से अविनाशी प्रारब्ध, मना अखंड सुख शांति प्रेम आनंद आधा कल्प के लिए, उसके बाद सिस्टम बदलता है, विनाशी हो जाता है सब कुछ। चलो मुझे ये प्रॉपर्टी मिली, मैं अभी इस प्रॉपर्टी का राजा बन गया, फिर ताज तख्त पहनता हूं। जो हमको ताज तख्त मिलता है सत्युग के शुरू में, हमारे क्वालिटीज के हिसाब से मिलता है, हमारे पुरुषार्थ के हिसाब से मिलता है, गुणों के हिसाब से मिलता है। जो आपको ताज तख्त द्वापर के बाद मिलेगा, वो तो आपने कुछ जमीन ले लिए हैं, धन लिया है और अपने आप को मालिक बना दिया, और वो टेम्पररी है। और सारा मदार सोच विचार पर है। पता है, मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी कि देखो बाबा ने दादी को बहुत बड़ा कार्य दिया था, तुमको वहां जाके मधुबन का मिनी मॉडल बनाना है, ठीक है। दादी जी आए थे 60 साल की उम्र में, 60 साल से 104 तक निमित्त बने 120 देशों में सेवा केंद्र खोलने के लिए, वो भी अलग अलग कल्चर अलग अलग धर्म अलग अलग भाषा अलग अलग रस्म रिवाज वाले के। कितने लोग निमित्त बने, ये तो बाबा का ही काम है, जो नूंधा हुआ था वो हो रहा था। लेकिन अपनी अवस्था बनाई और जो साधन है सुविधा है, या क्या कहते हैं, जब हम डीलिंग्स में आते हैं ना लोगों के साथ, माया का जाल होता है ना शुरू होता है ना, तो कैसे वो इन सभी बातों से बच के रही दादी और अपनी अवस्था जमाई, सेम टाइम विश्व सेवा का एक्सपेंशन कराया और पूरा बाबा का डायरेक्शन फॉलो किया, एक एक चीज कुछ भी मिस नहीं किया दादी ने, क्योंकि उनको ये बात अविनाशी कमाई क्या है, कैसे डबल इनकम बनानी है, उनको ये विधि पता था। इसलिए मुझे आज ये टॉपिक लेकर के दादी बहुत याद आई, क्योंकि दादी दादी थी लेकिन बाबा की सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी सच में। तो मुझे अंदर से लगा कि देखो हम अभी प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं, आप समझो मुरली सुनते हो हर रोज, ठीक है। मुरली सुनने के समय आपका ध्यान कहाँ है? मुरली रीडर के ऊपर है, जो मुरली पढ़ के आपको सुना रहा है उसके ऊपर है, श्योर? या बाहर भटक रहा है, आज बिजनेस क्या करना है, या ब्रेकफास्ट में आज क्या खाना मिलेगा, आज क्या करना है, आपकी चित कहाँ घूम रही है मुरली के समय? नहीं, मुरली के जो शब्द है, महावाक्य है, वो तब तक एब्जॉर्ब होंगी जब अंदर से जो उच्चारने वाला है, जो अविनाशी बाप है, उसकी स्मृति में रहते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप देखो दुनिया में आप जिसको महत्व देंगे उसके शब्द आपको याद रखेंगे ना, है ना? दैट्स ऑटोमेटिक मशीनरी, ऐसे चलती है। तो हम जितना ये ऊंचे ते ऊंच बाप है, मैं इस बाप की नियर और डियर स्टूडेंट हूं और ये पर्सनल आ रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, पहले ये स्मृति का स्विच ऑन करेंगे ना, तभी ये सामने वाला जो मुरली पढ़ने वाला होता है वो दिखाई नहीं देगा। इसमें आपकी कमाई है, इसमें आपकी रियलाइजेशन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ये इनकम कमाई स्थूल कमाई नहीं है, सूक्ष्म कमाई है ना। तो केवल ये स्मृति की स्विच ऑन करने से आपकी कमाई का रास्ता शुरू हो गया, कमाई का खाता शुरू हो गया। अभी हम जाते हैं, मैंने तो फिर सोचा चलो जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, हर एक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है। बाबा ने यह भी बताया है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लिए निमित्त बनेगा कर्म का हिसाब किताब चुप तो करने के लिए। तो किसी का माइंड नहीं करना और थैंक्स दो ना कि मेरे लिए एक निमित्त श्रेष्ठ ब्राह्मण बना है मुझे मदद करने के लिए। ये चाहिए, ये हेल्प चाहिए फैमिली से, क्योंकि हमारे पास अकेले योग बल नहीं है हमारा कर्म का हिसाब किताब चुकतु करने। और आप बाहर जाकर के कोई लौकिक संबंधी से तो चुकतु नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास बाबा नहीं है। तो थोड़ा बहुत अंदर होगा, लेकिन बाबा इसमें भी कहता है डोंट वरी बी हैप्पी, माइंड नहीं करो, थैंक्स दो कि मुझे आईना मिल रहा है। ऐसे नहीं कि इसके साथ कुछ कर्म हिसाब किताब, नहीं, निमित्त बना। वास्तव में कर्म का हिसाब किताब आपके एक्चुअल संस्कार के साथ होता है, जो संस्कार आप यूज किया है उससे कर्म जो बना है फिर खाता खुलता है। तो आप जब संस्कार को रियलाइज करेंगे ना, ऑटोमेटिक कर्म परिवर्तन होता है। तो जब डीलिंग्स में आते हैं तो कभी कभी माया के जाल में फंसने का चांसेस बहुत होता है, क्योंकि एक है कि आपस में गुणों का लेन देन होना चाहिए, लेकिन एक दो के स्वभाव में फंसना नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से व्यवहार चाहिए ना कि फमिलियरिटी से। तो हम अभी कमाई कैसे करें, जब भी हम संबंध व्यवहार में आए तो हमारी कमाई किस तरीके से हम करें। इसमें पहला फाउंडेशन मैंने देखा है कर्म योगी अवस्था। ये दादी जी ने, मैं दादी जी में बहुत नोट किया, दादी का बीच बीच में बहुत अच्छा अभ्यास था, अपने आप को निराकार बना देती थी। जब भी कोई मिलने के लिए आता था उसके बाद एक मिनट एक ग्लास पानी लेती थी या एक संतरा छोटा सा लेती थी और हम बोलते थे दादी हम छील के देते हैं आपको, नहीं नहीं, वो जैसे छीलती थी अपनी अवस्था बना रही थी, सेट कर रही थी। मतलब दादी की थोड़ी ऐसी युक्तियां थी बीच में अपनी कर्म योगी अवस्था को सेट करने में। जो भी आपका बिजनेस, जो डीलिंग्स है, करो भल करो, लेकिन पहले अवस्था में सेट होकर के करो। दूसरा कि योग माने क्या, योग माने क्या, योग से क्या इमर्ज होता है अंदर से, क्या इमर्ज होता है जब आप योग करते हो। पीस और खुशी और पावर और क्या गुण और सर्वशक्तिमान के साथ रिलेशन, और सबसे बेसिक बात प्यार, स्नेह। और शिव कौन है? कल्याणकारी है ना। तो दूसरी भावना जो प्रकट होती है वो कल्याण की भावना प्रकट होती है, कल्याणकारी, रहम दिल, शुभ चिंतक। ये है योग। तो डीलिंग्स करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए कल्याण की भावना रहे साथ साथ, तब जाकर के हमारी डबल इनकम होगी हर बात की। ये ईश्वर के कार्य हम कर्म कर रहे हैं, किसी को कल्याण पहुंचे उसके लिए हम कर रहे हैं। कल्याण की भावना से जो हम करेंगे ना, उसका डबल इनकम बनता है। आप देखो सारा दिन आपके कर्म का नोट करो। चलो हमने खाया पिया बस ऐसे साधारण रूप में, लेकिन आपका पूजनीय रूप जो पत्थर मूर्ति है उसके सामने तो भोग लगता है, लोग आकर के दृष्टि लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस कल्याण भाव में वो कर्म किया है ना, इसीलिए तो हमारी मूर्ति बनी है ना। तो कोई भी एक कर्म नहीं छोड़ना है ऐसे साधारण रूप से, बस पेट भरने के लिए खा लिया, आपने वो चांस मिस कर लिया कमाई करने का, बस ऐसे वैसे बोल दिया किसी के, आपने वो चांस मिस कर दिया। अंडरस्टैंड? जो भी हम कल्याण भाव से करते हैं ना, हमारी मूर्ति बन रही है। फिर जो वो मूर्ति के सामने पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, उसको इतनी खुशी होंगी। का बहुत बेहद का राज है इसका। हमारी कमाई केवल हमारे लिए नहीं होती है, हमारी कमाई हमारे भक्तों को खिलाती है। तो एक बेहद की स्मृति, कल्याण की भावना, तो डबल इनकम। और लास्ट में हम सोच रहे थे कि देखो दुनिया में, संसार में आकर्षण बहुत है, कई चीजों का आकर्षण है, खास करके साधनों के आकर्षण। आप कई जगह जाते हो, हाँ कितना अच्छा लगा, समुद्र के सामने है, या बाहर फॉरेस्ट में जाते हो या जंगल में जाते हो। हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है विदेश में, बिल्कुल समुद्र के सामने था, दादी जी की प्रेरणा थी, वो जैसे क्लिफ्टन में था ना, तो रिट्रीट सेंटर है, इतना अच्छा लगता है। लेकिन इसमें भी फंस सकते हैं आप, नहीं, उसका प्रभाव पड़ता है ना। फिर हम सोचते हैं इस साधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमको थोड़ी कंफर्टेबल जगह मिले तब हम सेवा कर सकते हैं, चलो ये चीज मैं ठीक ठाक कर दूं, इसमें परफेक्ट करूं, फिर मेरा योग लगेगा। हमारा परफेक्शन मेडिटेशन से आता है, विनाशी चीजों से नहीं। अब जितना भी आपके बॉडी के ऊपर, समझो आप ये हेल्थ करेंगे, ये डाइट करेंगे, ये डाइट करेंगे, आखिर विनाशी चीज तो है ही ना। आप परफेक्शन इस बॉडी द्वारा तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ओनली प्रैक्टिस ऑफ अविनाशी मेडिटेशन, मेडिटेशन अविनाशी है जो आपको परफेक्ट बनाएगा, आपकी फीलिंग्स को शुद्ध बनाएगा, आपको पावर देगा इस प्रकृति को, विनाशी प्रकृति को चलाने के लिए। तो इसमें हर बात मैंने देखा कि दुनियावी बात को सुनने से, सीन्स देखने से, हर बात से नॉलेज ले लो, इसको कन्वर्ट करो स्पिरिचुअल में। मैं एग्जांपल देती हूं, मुझे समुद्र बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मैं इस सेंटर पे जाती हूं तो मुझे वही कमरा देता है जो बिल्कुल मुझे समुद्र, ओशन व्यू मिलता है। और मैं जब जाती हूं ना, खास करके अमृत वेले के बाद में बैठती हूं 10 मिनट, और जैसे वो सीन मेरे सामने आता है ना, तो मुझे लगता है कि वही सागर, जैसे ये पानी है, पानी की खूबी क्या है, वो अपना रास्ता निकालती है, पानी को कोई रोक नहीं सकता है। छोटा सा भी क्रैक है, पानी उसमें घुस जाएगी। आप कुछ विघ्न भी डालेंगे, पानी ऐसा रास्ता बना देंगे। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे पानी जैसा बनना है। मेरे अंदर भी 70% पानी है। तो हर बात में जो भी नॉलेज है कुछ चीज में, उसको लेके आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि कितना अच्छा था, हम ये सेंटर पे गए, समुद्र था, फिर जाते समय दिल में कुछ गदगद होता है, चलो छोड़ के जा रहे हैं, क्या करें, दुख शुरू हुआ ना, इसमें कमाई क्या हुई, कुछ नहीं। आपको क्यों ये देखने को मिल रहा है? हम तो रिट्रीट सेंटर पे रहे थे 14 साल तक, शुरू करवाया था वहां से ऑक्सफोर्ड में। इतना ब्यूटीफुल है, पेड़ पौधा देखो, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, 60 एकर्स है। लेकिन मैं नेचर से बहुत इंस्पिरेशन लेती थी कि देखो कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई बड़ा झाड़ होता है, कोई छोटा झाड़ होता है, हर एक को अपनी अपनी जगह मिल जाती है। लेकिन बड़ा छोटा को नहीं, तुम यहां क्यों उग रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, इतना नेचुरल हार्मनी में रहते हैं। तो मैं जब ऑक्सफोर्ड से निकली तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ मिस किया। जो नॉलेज थी, जो खूबियां थी, वो मैं लेके गई ना, मैं अपनी कमाई करके गई। तो अविनाशी कमाई की बहुत गुह्य परिभाषा है। अभी आप देखो, रास्ते में आकर के दो कुमारियों ने मुझे रोका, बहन जी फोटो। अभी ये क्या है, विनाशी कमाई? फोटो तो ओम शांति हो जाएंगे ना, मोबाइल में एक बारी लिया, भूल गए और फिर मोबाइल चेंज किया, वो भी गया काम का। लेकिन उस समय अविनाशी कमाई क्या है? दृष्टि का लेन देन। तो हमारा एक ब्राह्मण कल्चर है, हमको ऐसे अविनाशी की लेन देन, ताकि हम औरों को मदद करें एक अविनाशी कमाई करने के लिए। इसलिए मैं सख्त मना करती हूं फोटो लेने का। विनाशी कमाई में क्यों जाना है? एवरीथिंग, हर बात में आप जाओ डेप्थ में, आप देखो एक एक मौका है आपके लिए अविनाशी कमाई करने की। ओके, हो गया टाइम।
तो सार गर्भित आपने व्याख्यान सुना उनके अनुभवों का, कि अविनाशी कमाई कैसे कर सकते हैं। एक हाथ हिलाकर शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और अभी आपका वक्त है कि आप जो प्रश्न पूछना चाहे, जरूरी नहीं कि इसी विषय से रिलेटेड, लेकिन अध्यात्म से रिलेटेड। कौन है जो ओटे सो अर्जुन, आ जाइए इसी माइक पर बोलेंगे आप। पहले ओटे सो अर्जुन,
पहले दीदी ओम शांति। दीदी आप देश विदेश की सेवा करती हैं, आप प्रखर वक्ता भी हैं, आपको बहुत यूट्यूब पे या टीवी पर बहुत सुना भी जाता है। दीदी आपने जानकी दादी के साथ बहुत समय बिताया है, तो एक बहुत गहरा अनुभव आपका हो तो वो बताएं, और हम लोगों को एक ऐसा टिप्स दें कि हम लोगों के पुरुषार्थ में और तीव्रता आ सके, तो उसके लिए आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताएं।
अभी ये चैप्टर खोलेंगे तो सारा दिन चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दादी के लिए जो नंबर वन पुरुषार्थ था, जिसके आधार से वो नंबर वन बनी हर बात में, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बहुत ऐसे सीन्स देखे हैं, क्योंकि क्या है, भारत में मान है, बहनों के लिए मान है, प्यूरिटी के लिए मान है, एक रिस्पेक्ट है, भगवान के लिए भावना है, आपको विदेश में ये नहीं मिलेंगे। विदेश में सीधा ना माना ना मुंह पे बोल देंगे। तो यहां पे आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे, ऐसे हां हां बोलेंगे लेकिन पीछे से करेंगे नहीं लेकिन वहां पे मैंने बहुत सारे सीन्स जो, और क्या है कभी कभी कई विदेशी लोग इमोशनल बहुत हो जाते हैं, तो इमोशनल होने के कारण पता नहीं होता है क्या बोल रहे हैं बड़ी दादी के सामने। तो ऐसा सीन था जो हम दादी के कमरे में गए थे, तो एक बहन थी और बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो बहुत जोर जोर से दादी के सामने बोल रही थी, और दादी का चेहरा आप देखो तो साक्षी दृष्टा का चेहरा, ऐसे सुन रही थी। तो वो तो इतना चिल्ला रही थी और मैं तो दरवाजे पर ही मैं खड़ी हो गई। फिर वो 3-4 मिनट के बाद अपना बंद किया, दादी जी ने बस ऐसे किया और वो बहन दूसरे कोने में चली गई और दादी जी बाथरूम में गए। जैसे बाथरूम में गए बस 10-15 सेकंड के बाद वापस आए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। फिर बोला अच्छा गोपी तुम टोली लेके आओ, अच्छा वो बहन को बोला अच्छा तुम ये करो ये करो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ सुना ही नहीं। मुझे ये सीन देख करके इतना इंस्पिरेशन मिला कि 1 सेकंड में समाप्त, नो फीलिंग नो थॉट। हमारा क्या होता है, कोई कुछ बोलता है ना थोड़ा फीलिंग में आते हैं, रह जाता है, फिर इसका वातावरण बनता है, सेंसिटिव वातावरण बन जाता है। दादी का तो ये बिल्कुल धंधा नहीं था, फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, सीन पूरा खत्म हर बात में। तो मैंने इसका क्या किया था, जब भी मुझे मधुबन आना था थोड़े समय के बाद, तो मैंने 2-2.5 वीक के लिए ये प्रयोग किया था, सब कुछ भूल जाओ, चलो अभी क्लास किया नेक्स्ट सेकंड भूल जाओ कि क्लास किया, चलो इसके साथ बात किया नेक्स्ट सेकंड भूल जाओ इसके साथ बात किया, और इतना हल्कापन महसूस होता है स्थिति में। हमारा क्या है, ये एक थोड़ा खिचड़ी का डब्बा बन गया है, बस इसको पकड़ के यहां बिठाओ, इसको पकड़ के यहां बिठाओ, ये बात पकड़ के यहां बिठाओ, और फिर लास्ट में भारीपन, फिर चलो नहीं हो सकता है चलो सो जाए, अशरीरी अवस्था उस तरीके से फिर मिलेंगी ना, ऐसा होता है। तो दादी के साथ तो बहुत अनुभव है, तो ये तो एक ही जो अभी इमर्ज हुआ जो आपने बताया, मीन हाँ मैंने वो पहले फुल स्टॉप का पुरुषार्थ, फुल स्टॉप लगाना।
तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया दोनों का, अभी किसका आप आओ।
ओम शांति दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि बाबा के साथ हम लोग जो प्यार का संबंध है उसको कैसे अनुभव में कैसे लाएं, जैसे सब कोई ज्ञान के आधार से तो बुद्धि जुड़ी है लेकिन जो दिल के आधार से जो बुद्धि जो प्रेम है उसको हम लोग अनुभव में कैसे ला सकते हैं, ज्यादा से बड़ा कह सकते हैं।
देखो आप किसी के साथ पहले पहले संबंध रखेंगे ना तो क्या करेंगे आप, पहले तो आप मिलेंगे ना, आंखों से मिलेंगे ना पहले, फिर थोड़ा बहुत एक्सचेंज करेंगे, फिर बातें शुरू होंगी, तुरंत आप डेप्थ में नहीं जाएंगे ना। तो कभी कभी क्या है, बाबा के साथ साइलेंस में बैठना बहुत जरूरी है, बाबा को फील करना, क्योंकि प्यार तो है, बाबा का प्यार आपके प्रति तो है, आपने उस समय अपने बुद्धि को शांत नहीं किया है ताकि वो महसूस हो। You understand? बाबा इज अ लिविंग एनर्जी, लिविंग बीइंग। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, बहुत हो जाता है ना, जाकर के बाबा के कमरे में बैठती हूँ, मैं दृष्टि में डूब जाती हूँ। मैंने बोला बोलो अभी, मैं बैठी हूँ, आपको जो बोलना है जो कहना है जो देना है मुझे दो, बिल्कुल ओपन माइंड ओपन हार्ट। मैं अपने बीच में कुछ ऐसे अपना डायलॉग नहीं करती हूँ, ये चाहिए चलो, और क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन जाता है। अरे कोई प्यार का संबंध होता है, आकर के गोद में बैठ जाओ ना आराम से, रिलैक्स। तो फर्स्ट स्टेप रिलैक्स इन साइलेंस और बाबा से दृष्टि का कनेक्शन शुरू करो। देखो छोटी बेबी जो होती है ना, पहले वो प्यार का संबंध दृष्टि से कनेक्ट होता है, वो पहले आप आर्ट सीखो, दृष्टि से बाबा का प्यार ले, और फिर उसके बाद जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है कि हमारी जो अंदर की दिल की बात है, वो आप इस कमरे में जाएंगे ना, बाबा को लिखेंगे या बताएंगे ना, आपको तुरंत हल्कापन महसूस होगा। वो जो अंदर का जो ऑनेस्ट कनेक्शन रहता है ना, बहुत हल्का रखता है आत्मा को। तो ये कम्युनिकेशन चाहिए, फिर दिन भर में कनेक्शन में रहना है बाबा के साथ। और मैं क्या करती हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले जो स्थूल में संबंध है उसका सपोर्ट पहले लेते हैं, हम पहले बाबा का सपोर्ट नहीं लेते, बाबा को पीछे से फिर जाते हैं, और फिर उस समय बाबा कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि आपने इस डायरेक्शन लिया, ये डायरेक्शन नहीं लिया पहले। तो इसीलिए पहले क्या मैं करती हूँ, जो भी अंदर की बातें हैं ना, मैं किसी को सुनाती नहीं हूँ, किसी को नहीं, पहले जाकर के बाबा, एवरीथिंग बाबा फर्स्ट। और बीच बीच में कनेक्शन रखना, माना ट्रैफिक कंट्रोल का रिस्पेक्ट रखना, कनेक्शन रखना माना कोई आपके साथ चल रहा है और पर आप ऐसे ही मुंह देख करके ना देखो को कैसे लगेगा, बाबा साथ ही है, ध्यान तो देना चाहिए ना। और तीसरी बात है रिलेशनशिप, हर संबंध का अनुभव, जो भी संबंध मिसिंग है ना आपके जीवन में, माया का आने का रास्ता वही है, वो किसी को खड़ा कर देंगे, चलो इसके साथ संबंध रखो। तो बाबा को हर संबंध में जीवन में लाना है, ठीक है।
इधर आएंगे, माइक पे बोलिए ताकि सभी सुने, और माइक पास में पकड़िए।
बाबा हर मुरली में बोलता है अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्या अभ्यास करें कि आत्म अनुभूति हो और दूसरे को भी आत्म दृष्टि से मिले।
कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या अभ्यास करें?
बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो, तो इसके लिए क्या अभ्यास करना होता है कि मैं आत्मा का अनुभव कर सकूं और दूसरों को आत्म दृष्टि से देख सकूं?
एक तो किसने उच्चारे है ये शब्द, बाबा ने। मैं क्या करती हूँ, बाबा से शुरू करती हूँ, क्योंकि हम आत्म अभिमानी केवल अपने संकल्प से नहीं बन सकते हैं, यहां से यहां ये है फ्लो। तो पहले मैं बाबा शब्द उच्चारती हूँ, फिर ये जो प्रेजेंट की घड़ी है ना, इसमें मैं पूरा ध्यान, यहां मैं यहां बैठी हूँ, पूरा मेरी फैकल्टीज को एकाग्र करती हूँ और मैं अंदर महसूस करती हूँ खुद को, मैं अंदर बैठी हूँ। बाबा ये थोड़े क्षणों के लिए मैं आत्मा आपकी बेहद के गोद में बैठी हूँ, और फिर जो सामने आता है, बाबा ये बाबा का बच्चा है, ये आपकी मीठी बच्ची है, बच्चा है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है, सिंपल है ये, ठीक है।
ओम शांति दीदी। दीदी योग में जब हम बैठते हैं तो जो मन और बुद्धि का रोल है वो थोड़ा स्पष्ट आप करें, क्योंकि कहते हैं बुद्धि भटकती है योग में, तो उसको थोड़ा और सटल में स्पष्ट करें। और दूसरा, बुद्धि का आलस्य क्या होता है? ये दो क्वेश्चन।
वास्तव में तो बुद्धि योग कहा जाता है, मन योग नहीं कहा जाता। मन मनाभव अवस्था होती है। लेकिन मैंने दो दिन पहले ही ये टॉपिक उठाई, बहुत समय पहले हम जब योग में बैठते थे तो हमको बहुत अच्छे सेवा के विचार आते थे, क्या करना है, आइडियाज आते थे, बहुत सुंदर सुंदर आते थे, इतना बेहद की सेवा का नजारा आता था। फिर थोड़े समय के बाद मुझे अंदर से ठीक नहीं लगा कि ये कुछ एक्यूरेट नहीं लगता है मुझे, तो मैंने गुलजार दादी को पत्र भेजा कि दादी मैं योग में बैठती हूँ तो व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन ये सारे संकल्प तो क्या ये ठीक है? तो मुझे जवाब एक लाइन में मिला, कंट्रोलिंग पावर की कमी। देखो, ये बुद्धि को स्थिर बनाना, मन को शांत रखना, ये योगी का काम है। बुद्धि योग स्थिर रहता है जब कंट्रोलिंग पावर बढ़ाते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग पावर कोई फोर्स की बात नहीं है। कंट्रोलिंग पावर आती है जब हम विल पावर बढ़ाते हैं, जो भी कुछ मन में बातें आती है उसको पहले बाबा को ऑफर कर लेते हैं ताकि हम उस इमोशन में डूब ना जाए, बाबा को दे दो। दूसरी बात है कि जब हमको अंतर पता चलता है, जो महान अंतर है बुद्धि को वो पता चलता है, तो ऑटोमेटिक वो श्रेष्ठता की तरफ जाएंगे। कंट्रास्ट से कंट्रोलिंग पावर पैदा होती है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर ऐसे नहीं कि आप फोर्स से कुछ चलाओ अपने आप को, लेकिन आपको अपनी बुद्धि को एक श्रेष्ठ विचारों के धागा में बांधना है। तो जब तक आपने बुद्धि में जो सत्य है, जो झूठ है, जो पवित्र अपवित्र है, उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं, अभी समझो मेरा विचार चल रहा है आपके स्वभाव के ऊपर, ठीक है, अभी मैं रोक लेती हूं बुद्धि को, इसका कॉन्ट्रास्ट का क्या हूं, चलो ये ऐसी है, ये ऐसा कर रहा है, इसका कॉन्ट्रास्ट का संकल्प क्या है, नहीं ये आत्मा अपना पाठ बजा रही है, समझ में आई? तो जो कॉन्ट्रास्ट का संकल्प लेंगे ना, तब बुद्धि उस तरफ जाएंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बुद्धि की जो परसेप्शन है, जो विचारधारा क्विक एक्टिवेट हो जाती है, उसको चैलेंज करो। चलो इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, बाबा ने क्या बताया, इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, और धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट दे करके वो जो प्रभाव पड़ता है ना पुराना आदतों की, वो मिट जाती है, ऑटोमेटिक एकाग्रता आती है, ऑटोमेटिक अपनी कंट्रोल आ जाती है सही रास्ते पे जाने के लिए। और बुद्धि आलस्य तब बनती है जब ये काम नहीं करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बनाने का काम नहीं करती है। पता है नहीं की बात नहीं है, ये एक अपने आप को अंतर्मुखी होकर के, साक्षी होकर एक्सपेरिमेंट करने की बात है। अंतर्मुखी नहीं बनते हैं ना, तब हम कंट्रोल में कुछ चीज को नहीं ले आ सकते हैं। योग का फाउंडेशन ही है अंतर्मुखता। और वास्तव में देखा जाए तो बहुत बार बाहर मुक्ता की आदत है। अभी आप सारा दिन बाहर मुक्ता में रहे, अभी आधा घंटा योग के लिए बैठेंगे, क्या योग लगेगा? नहीं, यू हैव टू लर्न टू लिव फ्रॉम इनसाइड, माने साक्षी होकर के सब कुछ देखो, संकल्प को देखो, सीन को देखो, व्यक्ति को देखो। अभी भी हम बैठे हैं, साक्षी होकर के देख रही हूं सीन, मैं अपने आप को भी साक्षी होकर के देख रही हूं इस सीन में, समझ में आई बात? ये चाहिए, अंतर्मुखता का अभ्यास चाहिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें इमर्ज होंगी अंदर से, बहुत मजा आएगा। ओम शांति।
दीदी मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जैसे पेशेंट्स तो देखते हैं तो फीस लेते ही हैं हम, तो अगर फीस नहीं लेंगे तो परिवार की पालना कैसे होगी। तो बाकी मेरी सेवा वो निस्वार्थ सेवा नहीं हुई, बाकी हम चैरिटी भी करते हैं, कैंप्स भी फ्री करते हैं, लोगों की फ्री मतलब काफ़ी सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको ज्ञान मतलब जो भी हो सकता है सेवा उस भाव में करते हैं। लेकिन जो फीस लेते हैं वो लेते हैं तो वो निस्वार्थ कैसे वो मतलब हमारा वो होगा, निस्वार्थ सेवा में तो नहीं आया, सेवा में नहीं आएगा ना, तो उसका अकाउंट कैसे चुकत होगा, मुझे ये लगता है।
नहीं देखो, एक है आपको अपने माना अपने प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, जो घर बार है वो है, तो उसके लिए जो जॉब के लिए जो जरूरी है, और आपकी वैल्यू भी है, आपका टाइम है, आप ब्राह्मण आत्मा हो, आप वहां कर रहे हो तो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। मुझे याद है एक भाई आया था, बिजनेस कंसल्टेंट था और विदेश का भाई था, और उसको रिलायंस के साथ एक बहुत बड़ी पोस्ट मिली थी। तो जब दादी के पास आया ना तो दादी ने इसको तुरंत पूछा, आपका पगार क्या है? तो दादी ने बोला ये तो बहुत कम है, उनको एक ब्राह्मण मिल रहा है, वो भी 30 साल का ज्ञानी तो आत्मा, क्योंकि दादी को पता था ये भाई उस कमाई से तो सेवा ही करेगा ना, यज्ञ में ही डालेगा ना। तो ऐसे नहीं सोचो कि हमको कमाई नहीं करनी है, करनी है, प्रैक्टिकल है, यू हैव टू अर्न एन इनकम फिजिकली, बट व्हाट हैपेंस विद द मनी आफ्टरवर्ड, ये देखना है। इसीलिए यज्ञ में बीज बोना बहुत जरूरी है हमारा काम, यू अंडरस्टैंड, उससे ही फिर हमारा जो संबंध है धन के साथ वो शुद्ध होता है। तो अंदर का थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए। नहीं, बड़ी दादी हमको बहुत पहले की बात है कहती थी कि इनकम से 50% अपना जो भी घर बार का खर्चा होता है वो करो, दूसरा जो 50% बाकी है उसका 25% टुकड़ा करो, 25% आप सेविंग्स में रखो, 25% में से आप आधा करके आधा मधुबन दो, आधा लोकल सेंटर पे दो। तो अंदर का मैनेजमेंट चाहिए ताकि हर चीज सफल हो, नथिंग शुड गो टू वेस्ट। सफल, जब सफल कुछ चीज होती है ना तब इसमें कमाई होती है। That's all. Okay?
ओम शांति दीदी
जी।
दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि यथार्थ याद कैसे करें जिससे विकर्म विनाश हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा की किरणें मुझ पे बरस रही हैं, मुझ आत्मा पे, और कभी कभी बाबा के गुरु को याद करके मेडिटेशन करते हैं, तो क्या ये दोनों यथार्थ है, इससे विकर्म विनाश होंगे या किसी एक से?
बाबा ने बहुत साफ शब्दों में बताया है कि हम एक ही योग की अवस्था में हमारे विकर्म विनाश होते, वो बीज रूप अवस्था है। हमारा काम क्या है, सारा दिन अलग अलग अवस्था को पकड़ के अपने मन बुद्धि को बिजी रखना, ठीक है? कभी कभी निराकारी अवस्था, फरिश्ता स्वरूप, अशरीरी बन जाओ, कभी कभी फुल स्टॉप, कभी कभी साक्षी दृष्टा, कभी कभी बाबा के साथ डायलॉग। लेकिन जो बीज रूप अवस्था है वो ही अवस्था में हमारे पुराने संस्कार मर्ज होते हैं। ये बहुत साइलेंस की अवस्था है, नहीं वो विचार से भी उपराम है, वो भरपूरता की अवस्था है, लेकिन बीज बिल्कुल जड़ में हम बैठे हैं, इतनी साइलेंस, और आपको लगेगी ज्ञान शक्ति की धारणा हो रही है और पूरा वृक्ष को सपोर्ट मिल रहा है, बीज रूप अवस्था, बहुत पावरफुल स्थिति है वो। मुझे अमृत वेले के समय महसूस होती है, बहुत समय के लिए नहीं, उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी होती, क्योंकि एक बारी आपने बुद्धि चलाई ना तो बीज रूप अवस्था पकड़ने में बहुत डिफिकल्टी रहता है, क्योंकि आपने वो अपनी व्हील चालू कर दी। समझ में आई बात? तो बीज रूप अवस्था का अभ्यास करो।
तो बहुत सारे प्रश्न और उन सभी के उत्तर भी मिल गए। एक मार्जिन रखते हैं, अगर किसी को पूछना है तो आ सकते हैं, और उसके बाद समापन करेंगे।
ओम शांति दीदी। हमने विनाशी कमाई और अविनाशी कमाई के विषय में सुना, लेकिन जब हम विनाशी कमाई के लिए वर्कप्लेस में जाते हैं तो उस समय हम साक्षात्कार मूर्त कैसे बने?
साक्षात्कार मूर्त बनना एक बड़ी स्टेज है, ठीक है? आपको केवल पहली स्टेज है एग्जाम्पल बनना। साक्षात्कार मूरत माना हर कर्म संकल्प बोल में लाइट, फुल एनलाइटनमेंट। ओके, वो तो बहुत ऊंची अवस्था होती है, लेकिन पहले बेसिक लेवल में यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल, गुणों का लेन देन। बिकॉज वर्क प्लेस पे जाएंगे तो एक एक गुण का टेस्ट पेपर आएगा, धैर्यता का, सहनशीलता का, संतुष्टता का, तो एक एक गुण में मास्टरी चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल बनो, और आपको ड्रामा अनुसार जो भी टेस्ट पेपर आ रहे हैं आप उसको स्टडी करो, उसमें मुझे कौन सा गुण इमर्ज करना है इस पेपर को हैंडल करने, क्योंकि एग्जाम मिलता है गुण के लिए, गुण को इमर्ज करने के लिए एग्जाम मिलती है। तो आपको बुद्धि थोड़ी चलानी पड़ेगी इसके ऊपर, यू कांट स्विच ऑफ योर इंटेलेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये टेस्ट पेपर कौन सा है, सहनशीलता का है, धैर्यता का है, संतुष्टता का है, शांति का, कौन सा टेस्ट पेपर है, और वो गुण इमर्ज करना है, और वो बाबा के साथ फिर अमृत वेले बात करके इमर्ज होता है। जब तक बुद्धि में फोकस आ गया कि मुझे इस गुण का प्रैक्टिस करना है, तभी आपके चार्ट में भी आएगा, तभी आप देखेंगे मैं इसको कर्म में कैसे लाऊं, उसका चेकिंग भी होता है। देखो आप एग्जाम्पल, जब तक चेकिंग नहीं होती है ना, चेंज नहीं हो पाएगा, और बहुत ब्राह्मण चेकिंग में कमजोर है, तो इसे चार्ट चाहिए।
समाधान हुआ जी? तो बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर का सत्र चला, सभी संतुष्ट, एक हाथ हिलाकर पुनः दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे, और उसके बाद भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे।